अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है समंदर का बादशाह हार गया। और ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ साथ शेयर किया जाए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सात समंदर पार 30 मुल्कों के बाद एक बादशाह और इसकी मलका की हुकूमत थी। इनके कोई औलाद न थी। बादशाह तवील सफ़र करता, दूसरे मुल्कों और जगहों की सैर करता, लंबे लंबे अरसे तक अपने मुल्क लौट कर ना आता। एक दफ़ा बादशाह सफ़र पर गया हुआ था कि इसके घर में एक खूबसूरत सा बच्चा पैदा हुआ। मलका ने इसका नाम ऐवान रखा। बादशाह घर के बाहर था, उसे अपने बेटे के पैदा होने के बारे में मालूम न था। बादशाह तवील सफ़र से थक कर अपने मुल्क की तरफ लौटने लगा। सफ़र के दौरान एक दिन सख्त गर्मी पड़ी और दूर दूर पानी का नामो निशान तक ना था। आखिर दूर एक झील नज़र आई, वहाँ झील की तरफ चल पड़ा। झील पर पहुंचकर घोड़े से उतरा और दो जानों बैठकर पानी पीने लगा। पानी पीते हुए उसे आने वाली आफत का पता ना था। हुआ ये कि पानी में से समंदर के बादशाह ने इसकी दाढ़ी पकड़ ली। जैसे ही अपनी प्यास बुझाकर बादशाह ने उठना चाहा, उसने महसूस किया कि किसी ने इसकी दाढ़ी पकड़ी हुई है। मेरी दाढ़ी छोड़ो, बादशाह ने कहा। नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी इजाज़त के बगैर मेरी सल्तनत का पानी कैसे पिया, समंदर के बादशाह ने कहा। तुम्हें जो भी जुर्माना करना है कर दो, जो चीज़ भी तुम्हें चाहिए ले लो, मगर मेरी दाढ़ी तो छोड़ो। बादशाह ने यह कहकर जोर लगाया, लेकिन उसे तकलीफ़ होने लगी और उसने कोशिश छोड़ दी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो वादा करो कि मुझे वो चीज़ दोगे जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो कि घर पर मौजूद है, समंदर के बादशाह ने दाढ़ी पकड़े हुए कहा। अव्वल तो बादशाह सख्त तकलीफ़ में था, दूसरा उसने सोचा कि वो क्या चीज़ हो सकती है जो मेरे घर में मौजूद है और मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। ऐसा नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सोचकर बादशाह ने समंदर के बादशाह से वादा कर लिया। समंदर के बादशाह ने इसकी दाढ़ी छोड़ दी। इसने अपनी दाढ़ी हिलाई, हाथ से छूकर देखा। उसे यकीन हो गया कि वो आज़ाद हो चुका है। ज़मीन पर से उठा, अपने घोड़े पर बैठा और सरपीट अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गया। इसके मुल्क में बादशाहज़ादा के पैदाइश पर खुशियां मनाई जा रही थी। लोग बार बार एक दूसरे को मुल्क के आइंदा हाकिम की पैदाइश पर मुबारकबाद दे रहे थे। बादशाह जब महल में दाखिल हुआ तो मलका नौमौलूद शहजादे के साथ इसके इस्तकबाल को आई। वो बहुत खुश थी, लेकिन बादशाह खुश होने के बजाय गम से निढाल था। वो शहजादे को देखते ही हजारों कतार रोने लगा। फिर इसने तमाम किस्सा मलका को सुनाया। मलका भी रोने लगी, लेकिन कितना रोते और कब तक रोते? रोते रोते रोने से हालात तो नहीं बदलते। आखिर सब्र आ ही गया। शहजादा वक्त के साथ साथ बढ़ता गया, बहुत तेज़ी से बढ़ गया। वक्त के साथ साथ बादशाह की परेशानी भी बढ़ती गई। देर या सवेर शहजादे को एक दिन समंदर के बादशाह के हवाले करना ही लाजिम था। आखिर चार ना चारा बादशाह ने फैसला कर लिया कि वो अपना वादा पूरा करेगा और शहजादा ऐवान को समंदर के बादशाह के हवाले कर देगा। वो एक दिन शहजादे को इस झील पर लाया और कहा कि बेटा, कल शाम यहाँ साहिल पर मेरी हीरे की अंगूठी गिर गई थी, बहुत तलाश के बावजूद ना मिली। तुम्हारी जवान आँखें हैं, ज़रा ढूँढो तो। इस तरह बहाना बनाकर बादशाह ने शहजादे को अकेला छोड़ दिया और ख़ुद लौट आया। शहजादा ऐवान अंगूठी ढूंढता हुआ दूर तक निकल आया। वहाँ कोई अंगूठी होती तो मिलती। ऐसे में एक ज़ईफ औरत उसके करीब आई और पूछने लगी, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? मेरी जान छोड़ो, मुझे परेशान न करो बूढ़ी चुड़ैल, शहजादे ने गुस्से से जवाब दिया। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, ये कहकर बड़ी भी अपनी राह पर चल पड़ी। शहजादा ऐवान ने सोचा कि बिला वजह ज़ईफ़ औरत के साथ बदतमीज़ी से पेश आया, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। यूँ भी बड़े बूढ़े लोग दाना और मामला फहम होते हैं, हो सकता है कि कोई अच्छी बात कह दे। ये सोचकर उसने बड़ी भी को पुकारा, ए दादी अम्मा रुक जाइए, बदतमीज़ी से पेश आने पर मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। कल शाम यहाँ झील के किनारे मेरे बाबा की हीरे की अंगूठी गिर गई थी। उन्होंने अंगूठी तलाश करने के लिए कहा और खुद चले गए हैं। काफ़ी देर से अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। नहीं बेटा नहीं, तुम्हारे बाबा ने अंगूठी तलाश करने के लिए तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ा। ये तो एक बहाना था, दरअसल उन्होंने तुम्हें समंदर के बादशाह के हवाले कर दिया है। बड़ी बी ने सारा किस्सा शहजादे ऐवान को सुना दिया। शहजादा ऐवान ज़ारो कतार रोने लगा। तब बड़ी बी ने कहा, शहजादे रोइए नहीं, इस राह में भी तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी, सिर्फ मेरी बात तवज्जो से सुनो। वो सामने वाले झाड़ियों में छुप जाओ, बिल्कुल हिलना झुलना नहीं, बिल्कुल खामोश रहना। 12 कबूतर एक तरफ से उड़कर आएंगे और साहिल पर उतरेंगे। वो 12 खूब खूबसूरत लड़कियों में तब्दील हो जाएंगे, जो किनारे पे अपना लिबास रखकर इस झील में नहाने लगेंगी। इनके पीछे 13वां आएगा और वो भी उतरकर इसी तरह खूबसूरत लड़की में तब्दील हो जाएगा। वो लड़की भी अपने कपड़े रख कर इन बारह लड़कियों के साथ नहाने लगेगी। जब वो सब नहाने में मशगूल हो तो तुम छुप कर साहिल पर जाना और 13वीं लड़की का लिबास उठाकर दोबारा इसी जगह छुप जाना। इस वक्त तक इस जगह से ना निकलना जब तक वो तुम्हें अपनी अंगूठी देने पर राज़ी ना हो जाएं। अगर नाकाम हो जाएं तो हमेशा के लिए तबाह हो जाओगे, क्योंकि समंदर के बादशाह के महल से आज तक कोई भी फरार ना हो सका। इसके महल में फसलें बहुत ऊँची ऊँची हैं और इन पर तलवारें नस्ब हैं। इस जगह से निकलना नामुमकिन है। ऐवान ने बड़ी बी का शुक्रिया अदा किया, इनकी बात बताई हुई जगह पर जाकर छुप गया और इंतज़ार करने लगा। बड़ी बी अपनी राह चल पड़ी। अचानक एक तरफ से 12 कबूतर उड़ कर आए, साहिल पर उतरे और हसीन लड़कियों में तब्दील होकर झील में नहाने लगे। थोड़ी देर में 13वां कबूतर आया, वो भी लड़की में तब्दील हो गया। ये लड़की इन बारह से ज़्यादा खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत और हसीन के शहजादा इसके हुस्न में खो गया और सब कुछ भूल गया। वो इतना महब था कि उसे पता तक ना चल सका कि कब वो नहाने लगी। अचानक उसे ज़ईफ़ औरत की कही हुई बात याद आ गई। वो झाड़ियों में से रेंगता हुआ निकला, 13वीं लड़की का लिबास उठाया और दोबारा झाड़ियों में छुप गया। जब वो तमाम लड़कियां नहाकर वापस आईं तो 13वीं लड़की का लिबास ना था। वो अपने कपड़े तलाश करने लगी। दूसरी लड़कियों ने भी उसकी मदद की, लेकिन वहाँ अगर इसका लिबास होता तो मिलता। थक हार कर 13वीं लड़की ने दूसरी लड़कियों से कहा, प्यारी बहनों, लिबास तलाश करना बेकार है, अब आप लोग घर जाएं। मेरी अपनी गलती है, एहतियात नहीं बरती, अब मैं खुद ही जवाब दूंगी। बहनें कबूतरों में तब्दील हुईं और उड़ गईं। 13वीं लड़की अकेली रह गई। इसने इधर उधर देखा और बोली, जो भी था और जो भी है, जिसने भी मेरा लिबास उठाया है मेरे सामने आ जाए। अगर बूढ़ा होगा तो अपने वालिद का जैसे अदब करूंगी। अगर अधेड़ उम्र होगा तो मेरा बड़ा भाई होगा। और अगर मेरी हम उम्र का होगा तो मेरा अजीज़ दोस्त बन जाएगा, मैं इसकी हो जाऊंगी। और इसकी मदद के लिए तैयार रहूंगी। जैसे ही लड़की ने आखिरी जुमला अदा किया, शहजादा झाड़ियों में से निकल आया। इसने लड़की से इसकी अंगूठी मांगी। लड़की ने अंगूठी दे दी और कहा, वो रहा रास्ता पानी के अंदर की बादशाहत का, इस पर बला खौफ चले जाओ तो तुम वहाँ मुझे भी पाओगे। मैं पानी के बादशाह की बेटी हूँ, मेरा नाम वेसीलीसा दानिशमंद है। वो 12 लड़कियाँ मेरी बहनें थीं। शहजादे ने उसे इसका लिबास दे दिया। वो कबूतर बनकर एक तरफ को उड़ गए। शहजादा ऐवान वेसीलीसा के बारे बताए हुए रास्ते पर पानी की बादशाहत के महल की तरफ चल पड़ा। इसने रास्ते में देखा कि वहाँ भी वैसे ही रोशनी थी जैसे सबके पास होती है। वैसे ही खेते घास के मैदान थे और सूरज की तपिश थी। फ़र्क था तो सिर्फ ये कि यह सब कुछ पानी में था। तवील सफ़र तय करने के बाद शाम को वो समंदर के बादशाह के महल में दाखिल हुआ और बादशाह को अपनी आमद की इत्तला दी। पानी का बादशाह खुद उसे मिलने आया और आते ही शहजादे पर गुस्से से चीख पड़ा, तुम इतने बरस बाद क्यों आ रहे हो? तुम्हें तो पहले आना चाहिए था। तुम्हारी इस गलती की सज़ा ये है कि वो महल के सामने पिंजरे और नोकदार पत्थरों से भरी हुई ज़मीन है। इस ज़मीन में घेरे घेरे घड़े भी हैं। कल सुबह तक इस ज़मीन को ऐसा कर दो कि ज़मीन बिल्कुल हमवार हो जाए। टाइम कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है तो हम नेक्स्ट एपिसोड आपको हम बाद में सुनाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया।